ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2024-25 पर विशेष बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉ अरविंद विरमानी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। लोकसभा में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में सरकार मुख्य रूप से रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रख रही है। इसके अलावा भी बजट में और क्या खास है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी जी। विरमानी जी, आपका स्वागत है। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 योजनाओं की घोषणा की है। इसका मकसद सरकार ने बताया है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करना और युवाओं का कौशल विकास करना है। इसके बारे में हम और विस्तार से जानना चाहेंगे।
मैं अंग्रेजी का फ्रेज यूज करता हूं कि जॉब्स एंड स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब इसका ये है कि अगर कोई जॉब है, कोई एम्प्लॉयमेंट है, तो उसका स्किल होता है, चाहे बिल्कुल थोड़ा स्किल हो, मध्यम स्किल हो या हाई स्किल हो, हर जॉब का कोई स्किल होता है। तो अगर स्किल लोग नहीं हो तो वो जॉब डिसअपियर हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। स्किल्स हैं और जॉब नहीं है तो वो स्किल अक्वायर करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो जॉब्स एंड स्किल्स गो टुगेदर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया है और इसका एफर्ट कर रहे हैं कि स्किल्स जेनरेट हो। तो जॉब स्किल्स कैसे पता लगती है? आपका एजुकेशन होता है तो वो जनरल एजुकेशन होता है, आपके आईटीआईज हैं तो वो प्रॉब्लम होती है कि ये सेट हो जाते हैं, उनके ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं, वो बदलते बड़े मुश्किल है। एनीवे, ईच लेवल पे आपको कुछ अक्वायर होता है, बेसिक चीजें जो चाहिए, पर अल्टीमेटली जो बेस्ट स्किल होती है वो इंडस्ट्री में आप जाके काम करें तो लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, जैसे पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट को बदला था और अब यूथ कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलता, पर हमने देखा है, और ये रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं, कि टाइम लगता है उनको समझने में, टाइम लगता है कि क्या स्किल्स एक्चुअली होनी चाहिए और किसकी डिमांड है। तो हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जब वो निकलते हैं कॉलेज से भी वो बहुत ऊंची होती है और ओवर टाइम क्वार्टरली वो कम होती जाती है। तो मतलब वो टाइम ले रहे हैं, उनकी वो स्किल मैच नहीं हो रहा। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये छोटी नहीं है। तो इसकी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, आपने जैसे कहा कि कई स्कीमें ट्राई कर रही हैं। इस बजट में 5 स्कीमों की बात हुई है और हर स्कीम किसी एस्पेक्ट या किसी कैटेगरी के डायरेक्टेड है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। पर बेसिक प्रॉब्लम यही है, आपके एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा जब तक आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं होगी और स्किल्स मैच नहीं करेंगे। तो ये अच्छा है कि इसकी रिकॉग्निशन हुई है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और मुझे होप है कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट करेगी, एनजीओज भी इसमें शामिल होंगे और स्टेट्स भी ज्यादा एफर्ट बनाएंगे, क्योंकि उनको समझ आएगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है।
जी, और सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत जो 5 योजनाएं घोषित की हैं उनमें सरकार 2,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।
बिल्कुल, जो आप कह रहे थे इंक्लूजन की बात हुई थी, तो एसटीज की एक प्रोग्राम है, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम देखते हैं जो इकोनॉमिक गैप एससीज और बाकी लोगों का वो कम होता जा रहा है, इकोनॉमिक एजुकेशनल, बट एसटी का अभी स्लो है, तो उस पर खास ध्यान दिया गया है।
जी, हम बात करते हैं बजट में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए किन नई योजनाओं की घोषणा की है, क्या नए उपाय किए गए हैं सरकार द्वारा, वो क्या हैं और आप उन्हें कैसे देखते हैं?
एमएसएमई की एक बहुत पुरानी डिमांड है कि उनको क्रेडिट कम मिलता है। इसका पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन उनकी कम होती है। कैसे हम देखें, अगर बड़ी कंपनी है, उनके ऑर्गेनाइज सिस्टम होते हैं, उनकी सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे होती है, और अगर उसी साइज में आपके 100,000 एमएसएमई होंगे तो हर का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो रिस्क होता है लेंडर को वो बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है उस रिस्क पे, कह रहे हैं कि उसके ऊपर क्रेडिट गारंटी देंगे जिससे लेंडर का रिस्क कम हो जाएगा, उनको लोन देंगे। पर दूसरा एस्पेक्ट जो इसमें मेंशन किया है जिसको कह रहे हैं डिजिटल फुटप्रिंट, अगर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज जीएसटी में, कस्टम्स में और एक्टिविटीज में इनका फुटप्रिंट बढ़ेगा तो वो इन्फॉर्मेशन जेनरेट करेगा और उससे लेंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है और अगेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन्फॉर्मेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, उसको अगर कम करोगे तो क्रेडिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम बस इस आइडिया को स्टिम्यूलेट कर रहे हैं ताकि इसका आगे हो। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो मेंशन की गई है वही स्किलिंग की जो हमें बात की थी, वो यहां पे भी दूसरी प्रॉब्लम जो है एसएमईज की, स्किल लेवल कम होता है। तो स्किल लेवल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कोशिश हो रही है, अब एक और अनाउंस किया गया है। और तीसरी चीज मेंशन की गई है कि एक तो जनरल एक्सपोर्ट होता है एसएमईज काम, जैसे टेक्सटाइल्स की बात करते हैं, लेदर गुड्स ये वो, और लेदर गुड्स की कई चीजें आई हैं कस्टम्स और उसमें, पर एक चीज होती है ई कॉमर्स। अभी हम ई कॉमर्स को सोचते थे इम्पोर्ट की तरफ, तो पहली बार इस बजट में एक्सपोर्ट साइड की डिस्कशन हो रही है कि कैसे हमारे लोग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करें। ओके, तो उसके लिए खास हब का प्रपोजल है, क्योंकि जो रेगुलेशंस कंट्रोल होते हैं सब चीजें होते हैं, हमें पता भी नहीं होता किस पे क्या होता है। तो लोगों ने जो स्टडी किया है उससे मैंने भी डिस्कशन की थी, एक रिसर्च स्टडी ने शो किया है कि वो जो छोटे छोटे कंस्ट्रेंट हैं उस करके हमारे लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जो चाइनीज हैं वो डायरेक्टली भी कर रहे हैं, मेक्सिको के थ्रू कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, तो इसका बहुत पोटेंशियल है। तो ऐसे कई चीजें नई एमएसएमईज की इस बजट में आई है।
आपने क्रेडिट की बात की, यानी ऋण जो छोटी इकाइयों को दिया जाता है, इसी में सरकार ने मुद्रा योजना की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए अधिकतम से 20 लाख रुपए कर दी है, ये भी इसी दिशा में एक प्रयास है।
हाँ, तो मुद्रा योजना तो काफी देर से प्रधानमंत्री को बड़ी अच्छी लगती है और इसका प्रयास था कि एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम बोलते हैं वो इससे बढ़े, तो खास करके फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्टेड है, तो वो कंटिन्यूइंग स्ट्रीम है, तो इसको बढ़ावा दिया है, एक्सपीरियंस होगा, इसका फायदा हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और लिमिट्स बढ़ा रहे हैं।
जी, बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है, वो योजनाएं क्या हैं? क्योंकि भारत स्टार्टअप्स का एक बड़ा नाम बन चुका है पूरे विश्व में, तो वो योजनाएं क्या हैं और अब स्टार्टअप्स को भारत में और बेहतर होते हुए कैसे देख रहे हैं?
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम लोग जो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं स्टार्टअप्स को कह रहे हैं, ये जो एंजल टैक्स था ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स के अगेंस्ट था, बड़ा अच्छा किया है ये गवर्नमेंट ने। सो दैट इज वन वेरी इम्पोर्टेंट सिग्नल, क्योंकि स्टार्टअप होते हैं जिसको कहते हैं इज ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग, वो छोटे छोटे लोग हैं, दीज आर नॉट बिग उद्योगपति जिसको कहते हैं, कोई नया बच्चा है जिसके आइडिया है उसको हम स्टार्टअप करते हैं, उसको जरूर इंकरेज करना चाहिए। तो अगर इंकरेज नहीं करेंगे तो हमारे वही पुरानी बिजनेस चलती रहेंगी जिसको कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी बढ़े और ये तो नई चीजें बना रहे हैं, नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया। दिस इज द थिंग विच अनफॉर्चुनेटली मैंने कई जगह देखा है, कई रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, स्टेट्स हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करती ये कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पुराने स्मॉल इंडस्ट्री उसको चेंज करने का बहुत एफर्ट करना पड़ता है, हम सालों से ट्राई कर रहे हैं, पर ये नई चीजें हैं, नई इनको इंकरेज करेंगे तो वो शुरू से ही ठीक है, उनको फिर और कुछ नहीं लेना पड़ेगा, वो अपने आप करेंगे। सो यू आर राइट, हमने टिंकरिंग लैब बनाई है, IITs में भी स्टार्टअप हब्स एक्सेट्रा हैं, ये सब चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसे कहते हैं 14 करोड़ लोग हैं, तो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। और यू आर क्वाइट राइट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल थिंग, आई थिंक अब हम नंबर 3 के करीब आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बट पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज वी आर सच अ लार्ज कंट्री, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। बट गुड, वी हैव मेड अ वेरी गुड स्टार्ट, वी आर डूइंग वेल, और अभी बहुत करना पड़ेगा।
एक बड़ा क्षेत्र है हमारे देश का कृषि, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, सरकार लगातार इस पर उपाय करती रही है, प्रयास लगातार उनके जारी रहे हैं, तो ये बजट कृषि और किसानों की आमदनी बढ़ाने में कैसे योगदान देगा?
तो कृषि का जैसे आपने कहा ये तो चल रहा है, मेरा ख्याल है हर बजट जो पिछली 10 बजट सब में कृषि के होता है तो नई चीजें करनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, हर साल नई चीज सोचना मुश्किल होता है, बट दी एफर्ट कंटिन्यूज। इस बजट में फोकस था नेचुरल फार्मिंग पे, एक बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर एक्सेट्रा। दूसरा फोकस है जो हमारी पुरानी प्रॉब्लम है, पल्सेस और ऑयल सीड्स की हमें कमी है, बहुत इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तीसरा पुराना फोकस था वेजिटेबल पे, क्योंकि वो टीओपी जिसको कहते हैं, टमेटो अनियन पोटेटो प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, तो ऐसे थोड़ा श्रिम्प फार्मिंग फिशरीज। हमें पता है कि कई स्टेट्स आंध्र या तेलंगाना में तकरीबन उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% हो रही है, क्योंकि उन्होंने फिशरीज का बहुत इम्पोर्टेंस दिया। तो ऐसे फोकस चलता रहता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली सबको पता है 40% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और तकरीबन 18% वैल्यू एडेड होगी।
ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता को भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है, इसके बजट में भी उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम विकास दर की गति को देखें, भारत आज भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर स्थिति में है। इस दिशा में सरकार के प्रयासों और विशेषकर इस बजट में जो उपाय किए गए हैं उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, बजट मोस्टली होता है एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स और टैक्सेशन के बारे पर मेंशन किया हुआ है कि कई पॉलिसीज का मेंशन किया हुआ है कि उसकी रिव्यू होंगी, टैक्सेस रिव्यू होंगे, और पॉलिसीज जो होती हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बजट सीक्रेसी में बनानी होती है, तो कई चीजें जिसमें कंसल्टेशन ज्यादा जरूरी है वो सेपरेटली होंगी। पर ऑब्जेक्टिव सब है कि हाई ग्रोथ को सस्टेन करें, इंक्लूसिव ग्रोथ चलती रहे
जी, और फिस्कल डेफिसिट को भी कम करना सरकार।
फिस्कल डेफिसिट का तो बना हुआ है, टाइमलाइन बनी हुई है और उस पर गवर्नमेंट दृढ़ रहेगी।
जी, इस बार 4.9% रहने का अनुमान रहा है।
जो प्रोजेक्टेड था उससे भी इम्प्रूव हुआ है। आई थिंक प्रोजेक्शन 5.1 या 5.2 की थी और एक्चुअल रिजल्ट है 4.9% ऑफ जीडीपी।
जी, ये सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे टैक्सेशन सिस्टम को, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो या इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हो, उसको कैसे और सरल बनाया जाए, करदाताओं को और बेहतर सुविधाएं क्या दी जाएं, इस दिशा में इस बजट में सरकार के प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
जीएसटी तो स्टेट्स पे डिपेंड करता है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कस्टम्स यूटीपी पे एक रिव्यू कमेटी होगी जिस जो सब कंसीडर करेगी। सिमिलरली जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वो 1960 के करीब की बनी हुई है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो ये सब चीजों का मेंशन और थोड़े बहुत जो छोटे छोटे प्रोसीजर्स ये वो पर वो कई चीजें की हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह, वो इस बजट में भी हैं, पहली बजट में भी थे, वो तो चलती रहेंगी।
अगर हम कहें इस बजट को अगर आप एक मिनट में कैसे समाहित करना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे?
आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है द फोकस ऑन स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं नीति में 18 महीने पहले आया था, तो आई एम सैड टू से कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रेज दिस इश्यू ऑफ स्किलिंग। तो आप समझ सकते हैं 18 महीने में कितना बदलाव आ गया है कि ये बजट में ये की पॉइंट बन गया है।
जी,
सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
बिल्कुल अरविंद जी, आपने बजट को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2024-25 पर विशेष बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य डॉ अरविंद विरमानी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।